2492 ભાદરવા સુદ 8 ગુરુવાર તારીખ 22/9/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામી નું શ્રી ઉત્તમ શૌચ ધર્મ ઉપર તેથી સમયસાર શાસ્ત્ર માં ગાથા 13 ઉપર સુવર્ણપુરી માં પ્રવચન સરમ પ્રવચન નંબર 55
નમો નોય સૌરિયંતાણ નમો નોય સૌદાન નમો નોય સૌરિયાન નમો નોય સૌજાયન నమో నువి సౌ త్రికాలవర్తి శ్రావణం ఓంకారమిందు సంయుక్త నిత్యం జాయంతి యోగిన కామదం ఔషధం చే ఓంకారాయ నమో నమ మంగళం భగవాన్ మంగళం రూపమౌని మంగళం కుంకుందారి ఉజేంద్రమౌ సుమంగళం నమా సుమరి సాధారణ స్వానుభూత్యాచాస్తి స్వాయి భవాయ సర్వాణ త్రికాల నిరుత నిదాత
ધર્મ શૌચ ધર્મ ક્રોધ કી સામે ક્ષમા માન કી સામે નિર્માનતા નારદો માયા કી સામે આર્જવતા ઓર લોભ કી સામે શૌચ ચાર બોલે ને પહેલે ક્રોધ માન માયા લોભ ક્ષમા નિર્માનતા સરળતા અને શૌચ સામે સામે ગુણ દોષ હૈ ગુણ હૈ ચોથા શૌચ ધર્મ जो स्वामी कार तक क्या कहते हैं सम संतोष जलयन जो धोई तिना मुल्लो मौल पुंजम भोयन गिद्धि विहीणो तो सूचितम हवे विमलम
बराबर
397 श्लोक है। जो कोई आत्मा समता और संतोष रूपी जल से अपना शुद्ध ज्ञाता दृष्टा का भाव में क्षमता नाम राग रहित दशा प्रकट करके और अपनी आनंद का संतोष लेकर अपना आत्मा अतिंद्रिय है उसका आनंद का अतिंद्रिय का संतोष लेकर जो तृष्णा और लोभ भी मल को धोते हैं तृष्णा नाम आगामी पदार्थ मिलने की इच्छा लोभ नाम प्राप्त पदार्थ की आशा वृद्धि वो दो को अपना आत्मा का अतिंद्रिय आनंद का स्वरूप का संतोष द्वारा उस तृष्णा और लोभ रूपी जब मैल को धोते हैं एक बात भोजन गिद्धि वीणो मुनि की बात है ना मुख्य तो उसकी दूसरी तो गृद्धि कंचन कामिनी की गृद्धि तो होती नहीं एक भोजन की गृद्धि उसको भी आ सकती नहीं वो रहित है तस शौच धर्म होता है मुनि का चिन्ह निर्मल संभाव का अर्थ किया है त्रण कंचन को समान जानना त्रण हो के कंचन हो सब गिने है अपना स्वरूप में वो है नहीं समझानना और संतोष तृप्ति अपने स्वरूप में सुख मानना तृप्ति का अर्थ ऐसा है संतोष का अर्थ वो है अपना आत्मा अतिंद्रिय आनंद की मूर्ति ऐसा अतिंद्रिय अपना स्वाद लेकर उसमें संतोष मानना हरी बात भाई समझ में आया अतिंद्रिय आनंद का आनंद लेकर संतोष मानना उसका नाम शौच धर्म है। अरे आत्मा मैं के सबको मुनि की तो मुख्य थी मुख्य बात है समझ में आया और ए जीवित का लोभ आरोग्य का लोभ इंद्री बनी रहने का लोभ और उपभोग का लोभ वो दो प्रकार का अपने और पर का अपने का जीवित रहने का लोभ पुत्रादि का आदि संयोगी जन को जीवित लेने का लोभ अपना आरोग्य रहने का लोभ और पर का आरोग्य लेने का पुत्रादि का आरोग्य लोभ इंद्री बने रहने के लोभ पर की इंद्री बने रहने के लोभ और उपभोग का लोभ अपना उपभोग का लोभ और पर का उपभोग का लोभ ऐसा 8 प्रकार का लोभ अपना आत्मा का आनंद का संतोष लेकर छोड़ना आ उसका नाम भगवान शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया शुद्ध चिदानंद प्रभु उसका अंतर में एकाग्र होकर उन पाप का राग से रहित स्वभाव में लीन होकर अतीन्द्रिय आनंद का संतोष में अपनी तृप्ति तृप्ति करके एक चार प्रकार का लोभ का त्याग करना, उसका नाम भगवान शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया? आ शौच है पानी, मैल लगते हैं तो पानी के पानी से जल से साफ करते हैं ना। तो आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति भरपूर अतीन्द्रिय नित्यानंद स्वभाव से भरा है, उसका सम्यक दर्शन में प्रतीत अनुभव करके पीछे अतीन्द्रिय आनंद में तृप्ति तृप्ति, जिन भोजन खा के पीछे तृप्ति होती है, सुधावन भोजन खाते हैं पीछे तृप्ति, ऐसे अपना आनंद तो भाव की बात है। अतीन्द्रिय आनंद का अंतर संतोष में तृप्ति करना, उसका नाम भगवान चौथा लोभ रहित निर्लोभ शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया? तो कभी इन्हें एक सेकंड भी आनंद का उन्हें अपना आनंद का संतोष नहीं लिया। भाई का पदार्थ मिला ठीक है, बड़ा ठीक है, पर संग मिला बहुत है। सुमलाल जी 5 लाख पैदा हुआ, तृप्ति हो गई धूल की,
अच्छा हुआ,
अच्छा हुआ, अच्छा का हुआ है, बुरा हुआ है, अंदर मलिन भाव लोभ हुआ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ नहीं बुरा समझते हैं। वो शक्कर को भी साफ करते हैं ना, शक्कर दूध ढोकर तो उसको भी बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं ना, है बुरा होता है तो अच्छा होता है, तुम कहते हैं बुरा, वो शक्कर है ना, हाँ दूध नाक कर साफ करते हैं तो बुरा हुआ, बुरा हुआ ऐसा, अच्छा हुआ लक्ष्मी मिला, अच्छा हुआ वो बुरा नहीं अच्छा ना, अच्छा नहीं बुरा ऐसा है, तो साफ हुआ। कहते हैं वो अपना आत्मा में संतोष से शांति से तृष्णा और लोभ का जमैल को धो डाना, वो इसका नाम ही अच्छा है, अच्छा है, लक्ष्मी मिला है ना, अच्छा है, बुरा न मानते, अच्छा अच्छा है, उसको दरकार करते नहीं। भगवान आत्मा शांत रस से भरा है, पूर्णानंद ऐसा रस में लीन होकर एकाकार होकर शांत से संतुष्ट है ना, उसका नाम भगवान चौथा धर्म अपूर्व धर्म चारित्र धर्म, चारित्र का चौथा आराधक धर्म शौच कहने में आता। समझ में आया? नो बात हो गई रैया चलती गाथा, कहाँ आया चलती, संवार या संवारक है, क्या हुआ जो वहां फेर लेना थोड़ा उसके साथ संधि करने को, वहां विकारी होने योग्य ऐसे लेता है पहले से। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा पर्याय में अवस्था में 9 प्रकार होकर अनादि से रहा है। समझ में आया? उन 9 प्रकार मैं जीव हूँ, अजीव है, राग है, वो आश्रव है, कुंज भी आश्रव है और बंध है, और जितनी प्रकृति का अंश नहीं आता इतना संवर है, एक क्षण अंश एक क्षण होता है इतना निद्रा है, एक अंक्षर होता है उसको मोक्ष कहने में आता है, ऐसे अनादि का 9 पर्याय रूप अनुभव है। समझ में आया? वो तो मिथ्या दृष्टिपना है, उसमें से एक चैतन्य का अनुभव उसने किया नहीं। यहाँ कहते हैं कि एकेला आत्मा में 9 का भेद पड़ते नहीं, असंबर इद्रा मुखादि, एक आत्मा में विनायक भाव का दृष्टि करने से तो स्वभाव की एकता होने से ऐसा भेद नहीं पड़ते, पर अनादि कर्म का निमित्त ने लक्ष्य में अपना पर्याय में 9 प्रकार का भेद है। कि भेद को जानना बराबर जानकर उसकी रुचि छोड़कर एकेला न्याय स्वभाव की दृष्टि करना, उसका नाम भूतार्थ से आत्मा जाना सम्यक दर्शन कहने में आता। समझ में आया? हमें कहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, साथ एक जीव दूसरा अजीव बीच में साथ हुआ, नौ हो गया ना नौ। तो कहते हैं कि वहां विकारी होने योग्य, पहले से शब्द लेते हैं कल से, और विकार करने वाला दोनों पुण्य ने दोनों पाप है। समझ में आया? बराबर बैसवा दी खुल नौ आ जाओ हमें थोड़ा। समझ में आया? अजी तो नौ तत्व भेद रूप कैसा है उसकी सिद्धि करते हैं, तो नौ तत्व में भी व्यवहार से यथार्थ कैसा है ऐसा जिसको जानने में ना आवे तो उसका ज्ञान जुटा है। तो खलास हो गया तो ना जिसे जुटा ज्ञान है रखड़ते हैं चार गति में हैं? रखड़ते हैं रूलते हैं अनादि से। तो कहते हैं कि अपना आत्मा में दया दान आदि शुभ भाव होने की योग्यता है, तो उससे उसको जीव पुण्य कहने में आता है, और उसमें निमित्त पड़ते हैं पूर्व का कर्म का मोह कर्म का उदय, उसको अजीव पुण्य कहने में आता है। वो कल आ गया है पाप को यहाँ आकर आरोप दिया, यहाँ का यहाँ पाप पुण्य हुआ उसमें निमित्त को अजीव पुण्य का आरोप दिया है पाप, यहाँ का आरोप देकर उसको अजीव पुण्य कहने में आया है। उपादान की विशेषता है वो बताना है यहाँ। समझ में आया? अपना भाव में राग की मंदता का शुभ भाव उसको यहाँ जीव पुण्य कहने में आया है, और उसमें जुना पुराना कर्म उदय रूप निमित्त पड़ते हैं उसको अजीव पुण्य कहने में आया है। समझ में आया? है पाप, पर यहाँ पाव पुण्य जीव पुण्य तो उसको अजीव पुण्य कह दिया, उसकी वजन से क्या कह दिया? भाव पुण्य का वजन समझे क्या कहते हैं, भाव पुण्य के वजह से कहते हैं क्या कहते हैं, सकारण से कारण से वो अजीव को भी उदय को भी अजीव पुण्य कह दिया एक बार है, पाप को भी पुण्य कह दिया यहाँ के कारण से, और विकारी होने योग अशुभ भाव पाप अपनी पर्याय में है, अपने से विकार होने योग भाव है, और विकार का निमित्त पूर्व का उदय उसको भी भाव पाप कहने में आया, अजीव पाप यहाँ भाव पाप हुआ जीव पाप, तो उदय को अजीव पाप कहने में आया। अरे यहाँ तो अजी इतना नौ भेद पड़ते हैं उसको पहचान कराता है, पीछे नौ भेद में से एक किला आत्मा का न्याय कर लेना दृष्टि में उसका नाम सम्यक दर्शन ने अनुभव कहने में आता। तो सेठ मेहनत करना पड़ता है बहुत, जैसा रस है ना उसमें कितना रस है, रात्रि में भी ऐसा लगे ओ 5 लाख हुआ 10 लाख हुआ, गोपालन जी ऐसे लगनी चाहिए ओहो मैं कौन हूँ, आ भंग भेद कैसे उत्पन्न होता है, ये भंग भेद उत्पन्न होता है उसका यथार्थ जानपन करके उसकी रुचि छोड़कर एकिला जीव स्वभाव पर दृष्टि करने से आत्मा का सम्यक दर्शन अनुभव होता, उसका नाम धर्म ने मोक्ष का कारण कहने में आता। समझ में आया? दोनों पुण्य ने दोनों पाप आया, आश्रम होने योग्य जीव की पर्याय, आश्रम होने योग्य जीव भाव, जीव भाव को जीव आश्रम कहने में आया है, और पूर्व का कर्म का उदय को अजीव आश्रम कहने में आया है, पूर्व का उदय को। समझ में आया? नवा न्याय बात नहीं है, यहाँ तो भाव यहाँ हुआ उसमें जुना कर्म का निमित्त पड़ा तो निमित्त को भी अजीव आश्रय कहने में आया। समझ में आया? वो सिद्धांत प्रवेश में है आश्रय अधिकार। पूर्व ना उदय को भी आश्रय कहते हैं, नया आने को आश्रय कहते हैं, भाव को भी आश्रय कहते हैं, तीन प्रकार के जन सिद्धांत प्रवेश में है। आई तो अपना इतना काम है यहाँ। समझ में आया? आत्मा अपनी वर्तमान पर्याय में शुभ अशुभ रूपी आश्रय भाव होने लायक है तो करते हैं, तो उसको जीव आश्रय कहने में आया। और उसमें पूर्व का कर्म का उदय निमित्त पड़ा उसको अजीव आश्रय कहने में, पूर्व का उदय को कहने में आया। समझ में आया? यहाँ तो कहेगा चले कि अपने आप एक के पुण्य पाप आदि भाव नहीं सिद्धि होती, ये क्या तो सामान्य स्वभाव में कैसे हो? और विशेष भेद तो निमित्त अधीन से है, अपनी पर्याय में सात प्रकार पड़ते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म है पूर्व भाई। आश्रय होने योग्य अपनी जीव की पर्याय में पुण्य पाप का भाव होने लायक है, होता है, उसको जीव आश्रय कहा और पूर्व का निमित्त को अजीव आश्रय कहा। उदय निमित्त का कर्म का उदय, नो कर्म की बात है नहीं, बाह्य का निमित्त की बात है नहीं, अंदर का कर्म का उदय को अजीव आश्रय कहा, जीव भाव को जीव आश्रय कहा। निमित्त निमित्त इतने से हैं, उसमें सात तत्व और नौ तत्व उत्पन्न होता हम बताते हैं। भाई समझ में आया भैया? अरे आज आया संवर, तीन बोल तो आया था कल। अरे संवर रूप होने योग्य अपनी पर्याय में संवर रूप होने योग्य की लायका जीव की पर्याय में है, उसको संवार्य नाम संवर होने योग कहने में आता है। अपनी पर्याय में संवर होने योग, आश्रव का अभाव होने योग, अपनी योग्यता से अपने में होता है, उसको यहाँ संवार्य नाम संवर होने लायक, अपनी पर्याय संवर होने लायक, उसको जीव संवर कहता है। जीव संवर कहने में आया। और संवर करने वाला और जूना कर्म इतना संवर में न आया, आया नहीं रहे, संवर उत्पन्न हुआ, पुराना कर्म का भी इतना निमित्त का अभाव हुआ, उसको अजीव संवर कहने में आया है। पूर्व का उदय का अभाव इतना हुआ, उसको यहाँ अजीव संवर कहने में आया है। समझ में आया? नहीं तो एक में सात नौ नहीं उत्पन्न होता है, तो एक निमित्त का अधीन से अथवा निमित्त के सद्भाव के अभाव से उसमें ऐसा सात तत्व की उत्पत्ति होती है, वो पर्याय नहीं से जानने लायक है, स्वभाव की दृष्टि में उसको छोड़ने लायक है। तो समझ में आया? संवर रूप होने योग्य, मैं तो शांति से तो लेते हैं काम, एकदम उतावला सोता काम नहीं है। आत्मा द्रव्य ने गुण तो टिकाव है और उसकी पर्याय में संवर होने योग लायकात है, पर्याय में योग्यता है, उसको जीव संवर कहने में आता है। उसका पूर्व का कर्म का उदय इतना अभाव रूप निमित्त हुआ, उसको अजीव संवर कहने में आता, ये उदय का अभाव हुआ ना इतना। समझ में आया? उसको नया आने की बात है नहीं, उदय का इतना निमित्त नहीं हुआ तो उसको अजीव संवर कहने में आता। जीव संवर अपनी पर्याय, अजीव संवर जीव की पर्याय। समझ में आया? हमें पुस्तक है, शांति से तो विचार करें, जीना पड़ते हैं, शेठ काल कहते हैं बहुत जीना पड़ते भैया, हम कहते थे कल बहुत जीना पड़ते, सूक्ष्म पड़ते, मेहनत के भी कभी किया है, यथा सुना ही नहीं पहले कभी, है
लो
सुना ही तुम्हारा वाक है लो ठीक महापुर का क्या कर तो गलती अपने नहीं दूसरे की गलती दूसरा पर दोष डालने का अनादि से टेव पड़ गई आदत है ये बात है अनादि की अपने से अपनी अपने को आप भूल के हैरान हो गया दूसरा कोई भुलाता है ऐसे है नहीं समझ में आया ना समझ पर ख्याल नहीं कबूल कैसे कर कबूल करे तो कहते हैं संवार रूप होने योग जीव की पर्याय को संवार्य कहने में आता है जिसको जीव संवार कहते हैं पूर्व का उदय को अजीव संवार कहने में आता है दोनों संवार है देखो दोनों संवार है आबाजू जीव संवार आबाजू अजीव संवार हम निमित्त में संबंध है ना हाँ हाँ कितनी बात आचार्यों ने कितनी स्पष्ट कर दिया है नव तत्व कैसा उत्पन्न होता है न उसमें से निकाल कर अकेला आत्मा की दृष्टि करना उसका नाम जीव का भूतात जानना सम्यक दर्शन है दो पर्याय पर्याय की बात है ना अजीव हाँ
जीव का संवर
क्या अजीव में इतना भाव संवर में निमित हुआ तो उसको अजीब संवर कहने में आया अजीब रुका ही नहीं हो नया आया ही नहीं पूर्व का उदय कोई अजीब संवर कहने में आता आया संवर किया नहीं तो उसमें वो निमित पड़ा नहीं इतना तो निमित उसको ये अजीब संवर कहने में जब भाव पुण्या हुआ तो उदय को अजीब पुण्य कहा ऐसे यहाँ संवर हुआ तो त्या पर्याय को त्या अजीब संवर कहने में आया अरे जी नहीं बात निमित्त में संबंध बताते बस इतना बात है निमित्त संबंध व्यवहार है उसको तोड़कर एकला ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है वो बताता है समझ में आया और निर्द्रा होने के योग्य अपनी पर्याय जीव की पर्याय शुद्ध होने योग निद्रा होने योग हुई उसको जीव निद्रा कहते हैं निद्रा होने योग स्वतंत्र बताते अपनी पर्याय में अपने योग्यता से निद्रा होने योग होती है उसको जीव निद्रा कहते हैं शुद्धि की वृद्धि अथवा अशुद्धता का नाश उसका नाम निद्रा होने योग जीव की पर्याय में लायकात है उसको जीव निद्रा कहने में आता और निद्रा करने वाला वो कर्म का उदय है वो निद्रा हो गया तो उसके निमित्त पड़ा तो निद्रा करने वाला उसको अजीव निद्रा कहने में निर्जीव निद्रा यहाँ अजीव निद्रा यहाँ समझ आया भैया ओहो आचार्य समझाने की रीत बहुत सरल से कह दिया है समझ में आया कि तुम एक अने एक तुम आत्मा और एक अजीव दो बीच में आज सात तत्व का भेद उत्पन्न हुआ एक में कहाँ आया दो भिन्न है दो भिन्न है ना वो भेद है दो भी अने वो भी भेद का भी अलग छोड़कर अभेद की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है नहीं अपने में आश्रव होने एक पुण्य होने एक समर होने एक ऐसी पर्याय का लक्ष्य करे तो भी भेद दृष्टि है उसका भी लक्ष्य छोड़कर एक लाख न्यायिक भाव का दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन समझ में आया फिर कहते हो विशेष वो समझने की चीज है भगवान आत्मा अपनी पर्याय में अवस्था में पुण्य होने योग पाप होने योग आश्रय होने योग संवर होने योग निद्रा होने योग बंद होने योग मोक्ष होने योग इस सात पर्याय होने योग अपनी पर्याय में पर वो पर्याय में पूर्व का कर्म का निमित्त गण के उसमें सात भाव त्या भी ले लिया तो वो निमित्त निमित्त संबंध का लक्ष्य करना वो व्यवहार है उसका आश्रय छोड़कर एकला भेद का आश्रय करना उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। अरे बात भाई भूयथेना विगता है भेद जानना अदरना नहीं है तो है तो है ही पर वो भेद अभेद में ले जाने को बताता है कि एकाकार गिनायक स्वरूप चिदानंद सामान्य शुद्ध नई का विषय अभेद आत्मा वो भेद का आश्रय लक्ष्य छोड़कर अभेद का दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। पीछे भेद रहा और जानने लग रह गया समझ में आया धीमे धीमे व्यवहार है होगा नहीं होगा कहां से आया वो व्यवहार उसको कहते हैं कि वो भेद का लक्ष्य छोड़कर नीचे की दृष्टि हुई तब भेद जितना रहा उसको ज्ञान करना उसको व्यवहार कहते हैं। नीचे बिना व्यवहार आया कहां से कोई देश माता नहीं कोई देश माता है कहते पहले सुनो कि भूयत्थम यहाँ विकार का आत्मा उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन हुआ तो क्या सम्यक शुद्ध ज्ञान हुआ क्या शुद्ध द्रव्य स्वभाव एक रूप स्वभाव उसका लक्ष्य किया दृष्टि किया तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ साथ में भाव शुद्ध ज्ञान हुआ भाव शुद्ध ज्ञान हुआ उसका दो भेद पड़ गया शुद्ध विकल्प नया एक निश्चय व्यवहार तो शुद्ध ज्ञान हुए बिना निश्चय व्यवहार होता नहीं समझ में आया। एकला राग की एकता उसको व्यवहार कहाँ कहते पर नई नहीं है ना ध्यान क्या कहते समझो कि एकला राग आदि है उसको व्यवहार कहाँ से कहा क्योंकि व्यवहार नई जो है वो निश्चय नई की अपेक्षा रखती है तो निश्चय नहीं जब अपना शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ शुद्ध न्यायिक चेतन है ऐसी दृष्टि हुई तो साथ में शुद्ध ज्ञान हुआ। शुद्ध ज्ञान हुआ वो प्रमाण हुआ प्रमाण का दो भाग अवयव प्रमाण अवयवी है और उसका दो भाग अवयव है एक निश्चय और व्यवहार निश्चय अभेद को देखते हैं और व्यवहार भेद को जानते हैं पर निश्चय हुआ हो तो व्यवहार जानने में आया समझ में आया है कारण पर नीचे बिना व्यवहार किसका व्यवहार तो अंदर है नहीं बिना व्यवहार कैसा प्रमाण बिना व्यवहार कैसा सम्यक दर्शन बिना व्यवहार कैसा समझ में आया कोई बड़ी गड़बड़ है न व्यवहार नीचे नहीं है कि नहीं क्या नहीं है तो नहीं प्रमाण का अंश है कि अधर का अंश है तो प्रमाण तो शुद्ध प्रमाण कब होता है कि जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन कब होता है कि त्रिकाल भतार का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ सम्यक ज्ञान हुआ तो उसका दो भेद पड़ गया नीचे व्यवहार तो वो बिना नीचे व्यवहार आया कहां से राज बहादुर जी हैं फिर कहते हैं फिर क्या हरकत नहीं है क्या वो तो उसकी घुटना है ना क्या है देखो कि नई नई का अर्थ क्या श्रुत विकल्प नया पंडित जी श्रुत का भेद श्रुत प्रमाण ज्ञान का भेद श्रुत प्रमाण है भले अंश ज्ञान का अंश पर प्रमाण है प्रमाण का अर्थ स्व को जाने निश्चय को भेद को जाने तो प्रमाण को शुद्ध ज्ञान कहा अने प्रमाण का भेद को नहीं कहा तो प्रमाण जो उत्पन्न नहीं हुआ क्या भेद कहां से लाया अने प्रमाण उत्पन्न कब होता है कि सम्यक दर्शन होता है तो अने सम्यक दर्शन कब होता है भूतार का आश्रय करते हैं तो समझ में आया फिर बात नक्की करना ऐसे आत्मा एक समय में वो तो आगे चला है एक 413वीं गाथा में व्यवहार मुंड है ऐसा लिया है 413 देखो 413 413 क्या कहते तुम्हारे तेरा उन्हें तो दूसरा है ना, आप पुस्तक दूसरा है, हमारा पुस्तक ए 4, 5, 64 बस हिंदी 64 अने उसका टीका है 465 टीका। देखो जो वास्तव में मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक हूँ, श्रावक हूँ, इस प्रकार द्रव्यलिंग में ममत्व भाव के द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादिरुद्ध अनादिकाल से समागत आया व्यवहार मुंड है, क्योंकि व्यवहार मुंड है, क्योंकि व्यवहार है ही नहीं। जब लग निश्चय का आश्रय हुआ नहीं तो व्यवहार होता नहीं, उसको यहाँ व्यवहार मुंड कहने में आता है, मुंड है, व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार मुंड है। देखो उसमें तो बड़ा प्रशंसा हुई थी, उसमें तो व्यवहार मुंड होते हुए प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर और आरूढ़ न होते हुए, देखो क्योंकि व्यवहार में मुंड हो गया, दयादान हृदय राग की मंदता में मुंड है, व्यवहार का ज्ञान नहीं, क्योंकि प्रौढ़ विवेक वाला राग से भिन्न जो निश्चय स्वरूप है उसका तर्क अनारूढ़ है, निश्चय पर अनारूढ़, व्यवहार में मुंड अनादि रूढ़, दिन बोल है अनादि रूढ़, व्यवहार मुंड निश्चय अनारूढ़, उसमें सब निकलता। क्या कहे कि एकेला राग में शाम को मुनि वैसा छवि मूल गुणादि व्यवहार श्रद्धा ज्ञान में मानते हैं तो व्यवहार मुंड है, क्यों कि विवेक प्रौढ़ विवेक भेद ज्ञान, प्रौढ़ विवेक वाला भेद ज्ञान वो राग से भिन्न अपना स्वरूप का निश्चय पर आरूढ़ नहीं है, परमार्थ सत्य भगवान समय सार को नहीं देखते अनुभवते हैं। एकेला व्यवहार में मुंड है अनादि, अनादि रूढ़ हो तो कसाई मंद तीव्र, मंद तीव्र को अनादि का चला आया है, समझ में आया, व्यवहार कहां से आया, उसमें तो बड़ा प्रश्न हुआ है हमारा सामने, हम एक बार ऐसा बोला था उसमें है समझे, सितंबर में यशो विजय है, यशो विजय उसने दीप पर 84 बोल निकाला है, दीप पर 84 बोल निकाला है, समझे या नहीं है, 84 बोल निकाला है, पहले हेमराज जी था, हेमराज था ना वो प्रवचन सार का करने वाला बाला बोध हेमराज पंडित, उसने सितंबर सामे 84 बोल निकाला था, और जब निकाला तो यशो विजय दीप पर 84 निकाला, तो हम तो बहुत वर्ष पहले से सब देखा, तो उसमें एक बोल ऐसा निकाला उसने कि दिगंबर लो नीचे नहीं पहले कहे पीछे ले व्यवहार, हाँ उसमें क्या कहा, नीचे नहीं पहले के पीछे ले व्यवहार, भाषा क्रम जाने नहीं जैन धर्म का सार, ऐसे कहा है, यहाँ है नहीं पुस्तक, सब पुस्तक यहाँ पर है ना, हाँ भूल निकाला है सितंबर है, थी अनादि की थी, पकड़ लिया वो यहाँ कहा, अब जब 33 पंडित आया था यहाँ विद्युत परिषद होती ना भैया, विद्युत परिषद 3 साल में उसने कहा था, देखो क्या कहते हैं, नीचे ही नहीं पहले कहे तुम, ऐसा दिगंबर की श्रद्धा है, ऐसा तो बात सितंबर कहते हैं, मैंने तुम तो मानते हैं कि व्यवहार पहले नीचे पीछे क्या हुआ, तुम तो ऐसा हो गया, समझाया बहन प्रसाद जी, हाथी है ही नहीं, हाथी कहां से है, अपना स्वरूप का तो निकाला है नहीं, अनादि प्रौढ़ विवेक, राग से भिन्न पड़ी बिना निश्चय आरूढ़ हुई बिना व्यवहार आया कहां से, समझ में आया, वो 413 में पुकार करते हैं अमरचंद्राचार्य, भगवान आत्मा भुजत्थम सिदो खलो समाइठी हवई जीव, पहला शब्द 11 का था, 11 का था, भुजत्थम सिदो भगवान पुदार भूतार भूतार ध्रुव ध्रुव शांत सागर, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, पहले सम्यक दर्शन नीचे से होता है, पीछे रया राग आदि को व्यवहार जानने में लायक है, 12 गाथा में कहा है, यदा त्वे जाने लो प्रयोजनवान है, तीते काले जाना हुआ व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरणीय नहीं, समझ में आया, आवाज बहुत चर्चा हो गई है, ऐसा बोला तो बात से चर्चा आई, हमको भाई आए तो बात करते हैं, करते सच आया है, उसको कोई व्यक्तिगत हमारा कोई बात नहीं, समझ में आया, तो ऐसे आया कि मैं नीचे ही है पहले तो पीछे राग को भेद को व्यवहार कहने में आता ऐसा अनादि सिद्ध सिद्धांत है, नहीं तो अनादि रूट गया। यहाँ तो राग की ममता तो तुम व्यवहार कहते हैं, तो यहाँ कहते तो व्यवहार मुंड है, तो व्यवहार मुंड है। जागृत तो हुआ नहीं चैतन्य भेद पार करके, राग से भेद पार करके अनुभव न हुआ तब तो व्यवहार मुंड है। भेद पार कर जब जागृत हुआ तब राग आया, उसको व्यवहार कहने में नो यू आया। आए तो सब दिखाए देखो, उसमें नाम जो है नाम दिग्पट आगो सब दिखा था ना सारा पहले जो देखो एक बहुत मोहतिर गाथा है, मोहतिर श्लोक है, दिग्पट चौरासी बोल। नीचे नहीं पहले कहे पीछे ले व्यवहार, भाषा क्रम जाने नहीं जैन मार्ग को सार। इस जैन मार्ग को सार भाषा कहते हैं नहीं नहीं नीचे हाँ ऐसे है नहीं, वो कहते हैं बात बराबर है। दिगंबर की बात अनादि चलती थी, बात पकड़ी है बराबर है, ठीक बात पकड़ी है, पर उसका दोष निकालते वो वस्तु ऐसी कोई व्यक्ति का काम नहीं, वस्तु स्थिति है
भूल है बहुत
पाठ है, हम पहले से उसको निकाल कर नक्की किया, नक्की किया सब चिनक दिया जो समझ में आया। भगवान सच से समझना चाहिए, कोई पक्षपात से समझना नहीं, क्योंकि अपनी चीज है वो दृष्टि में न आई तो समय ज्ञान हुआ नहीं, समय ज्ञान हुए बिना प्रमाण हुआ नहीं, प्रमाण बिना नहीं कहां से आया। समझ में आया क्यों भाई राजेंद्र बहादुर जी कैसी बात है
बाबू जी।
हाँ हाँ बात तो ऐसी है, तीन काल ऐसे एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ, कोई पंथ कोई दो तीन होता ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ है, पहले सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ ने देखा आनंद गुण का स्वरूप, ऐसा आत्मा को सामान्य ध्रुव को उत्पाद वही की पर्याय बिना कहा, ऐसा ध्रुव पर दृष्टि देने से अभेद अनुभव होता है, तब सम्यक दर्शन में शुद्ध ज्ञान का प्रमाण प्रकट होता है। पीछे शुद्ध ज्ञान प्रमाण में दो भेद पड़ जाते हैं, एक निश्चय ने व्यवहार, शुद्ध ज्ञान हुए बिना नीचे व्यवहार होता, शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता, यानी सम्यक दर्शन द्रव का आश्रय बिना होता। समझ में आया, वस्तु ऐसी अनादि ही चली आई है, कोई नई नहीं बनाई है। ध्रुव का आश्रय है, द्रव का, क्योंकि पर्याय शुद्ध आदि द्रव में पड़ी है, पर्याय में से पर्याय नहीं निकलती है, पर्याय में से पर्याय आती है, पर्याय तो एक समय के है, उसमें से नई पर्याय कहां से आई। अरे द्रव में अंदर में आनंद गुण पड़ा है, उसमें दृष्टि करने से नई पर्याय आती। समझ में आया, उसकी श्रद्धा तो बराबर सुधार करे, सुधार में गड़बड़ होगा तो संत स्वरूप की दृष्टि और अनुभव कभी होगा नहीं। समझ में आया, हाँ नहीं होगा श्रद्धा में जो गड़बड़ करके, ऐसा होगा ऐसा होगा, पर्याय पहली होगी व्यवहार पहला होगा, श्रद्धा विपरीत है उसकी। समझ में आया, आ तो सनादि अनादि सनातन मार्ग है, वो कोई कि क्या हुआ नहीं है, मार्ग ऐसा ही अनादि से चला आया है। भरत हिरवत ने महावीर क्षेत्र भगवान विराजते हैं, ये लोकनाथ परमेश्वर क्या भी वही मार्ग है, हाँ दूसरा कोई महाराज। कहते हैं कि भगवान तुम व्यवहार पहले कहते हो, व्यवहार किसको कहे, व्यवहार नहीं किसको कहे, तो व्यवहार अपास है। जब निश्चय का आरूढ़ होकर निश्चय स्वरूप न्याय भाव इसमें आरूढ़ होकर राग से प्रौढ़ भेद ज्ञान करके अभेद में दृष्टि हुई, तब निश्चय ज्ञान हुआ, तब वो ज्ञान का अंश जो व्यवहार वो भेद है उसको जानते हैं, भेद है उसको जानते हैं, बस। समझ में आया, बहुत गड़बड़ थी अचारे आलो को व्यवहार करते करते नीचे होगा, क्यों व्यवहार का अर्थ क्या क्यों राजबहादुर जी व्यवहार करते करते सब ऐसा कहते हम पंडित लोगों को कहा था उस समय 33 पंडित आए यहाँ तुम कहते हो हाँ क्या कहते हैं यहाँ शास्त्र ऐसे कहते हैं कि नीचे हो तो व्यवहार हो। 11वीं गाथा में पहले नीचे ही कहा पीछे 12वीं गाथा में आया देखो 12वीं गाथा में तो जानीला प्रयोजन ऐसा आया देखो 12वीं गाथा है कि नहीं क्या है देखो जाना हुआ देखो ए पाना 26 देखो ए नीचे से ऊपर चौथी लिट्टी नीचे से ऊपर नीचे से नीचे तीन लिट्टी छोड़ देना आचार कहते हैं छोड़ देना ऊपर से जानने में आता हुआ उसका प्रयोजनवान है बाहर शब्द पर आए वो जानने में आता हुआ उसका प्रयोजनवान है वो शब्द पर आए नीचे है नीचे है। नीचे है वो अर्थ है ना अर्थ ऊपर से चौथी पंक्ति अर्थ नीचे है उससे चौथी पंक्ति ऊपर ये अनेक वर्णमाला के समान होने से महावा सब अभी स्पष्टीकरण हो गया है जानने में आता हुआ उसका पाठ में ऐसा है यदात्री ऐसा पाठ है समझ में आया बोला यदात्री प्रयोजनवान हो ऐसा पाठ है दूसरी पंक्ति नीचे यदात्री प्रयोजनवान यदात्री अर्थात जब निश्चय का भान हुआ तो काल में व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान कहने में आता है वो दूसरी पंक्ति है उसका नीचे अर्थ है जानने में आता हुआ उसका प्रयोग निश्चय हुआ सम्यक अनुभव हुआ पीछे जितना शुद्धता का मंदता रही अशुद्धता है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है आदरणीय नहीं जब जाना हुआ नहीं ऐसा भी नहीं समझ में आया। अरे भाई वाद विवाद वाद विवाद सच वस्तु है उसको पकड़ने की लायकात बिना बाहर से मिल जाए बाहर से मिल जाए वो माटी हट करके अनादि का प्रयत्न किया अपन मिला समझ में आया। कहते हैं भाई प्रभुआ तेरी चीज जो शुद्ध चिदानंद स्वरूप जिसमें अनंत सिद्ध परमात्मा पड़ा है वो सन्मुख की दृष्टि के बिना तेरे सम्यक दर्शन कभी तिनकाल में होता नहीं अने सम्यक दर्शन बिना शुद्ध ज्ञान सच्चा भाव शुद्ध होता अने भाव शुद्ध ज्ञान बिना नहीं होती तो नहीं हुए बिना नीचे व्यवहार होता ही नहीं समझ में आया। 350 वर्ष पहले वो तो कह गया है कि नीचे ही नहीं पहले कहे तुम तो ऐसे पहले कहते हो नीचे व्यवहार कहते हो ऐसा है ही समझ में आया। कहते हैं भी क्या कहते हैं देखो ना अपने नव तत्व का भेद है पर उसको व्यवहार नहीं कहते हैं उसको छोड़कर न्याय की दृष्टि हुई तब जितना व्यवहार आगा दी रहते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। जरी दृष्टि फेरे बहुत फेर हो जाता है शास्त्र को वांछन करते हुए अपनी दृष्टि में मिला देते हैं जैसी उसकी श्रद्धा हो ने मिला देते हैं खोलना चाहते हैं पर वो क्या कहते हैं उस तरफ अपनी दृष्टि नहीं ले जाते हैं हर मैंने मिलान करते हैं मिलान करना चाहिए हाँ ऐसा है दो ऐसा भाई हम नती प्रभु शांति से समझना चाहिए बापू ऐसा मनुष्य भी मिला कोई साथ में आएगा नहीं संप्रदाय को बहुत मनाना मनाया है बहुत मानते हैं कोई शरण है नहीं दूर में समझ में आया। शरण चिदानंद प्रभु अंतर में दृष्टि करने से शरण भूत पड़ा है प्रभु उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन में शांति यानी श्रद्धा ने स्वरूप अनुभव होता पीछे रहा बाकी है उसको जानना व्यवहार में का विषय है नहीं है तो विषय तो उसका विषय है भेद राग है उसको जानने लायक है आदरने लायक नहीं आदरने लायक निश्चय उपाधि व्यवहार जानने लायक ही व्यवहार ही नीचे उपाधि भैया रात्रि को भाई प्रश्न करते हैं वो भी कहते हैं व्यवहार ही क्या दो उपाधि हो जाए दो हो रहे कहां से दो रहे कहां से तो एक उपाधि है तो बे रहे પણ દો પાસે દો રાહ હશે, એ તો એક ગયા. સમજમાં આયા? હા, અરે ઝઘડા ભાઈ, પ્રભુ તારે ઘરે આનામાં આટલા ઝઘડા, ઝઘડા વિના નું કરે. સદગુરુ કહે સહજ કા ધંધા, વાદ વિવાદ કરે તો અંધા. હું બનારસ દાસ કહે હો ભાઈ. સદગુરુ કહે સહજ કા ધંધા, વાદ વિવાદ કરે તો સહજ કા ધંધા હૈ, સહજ કા ધંધા. કહેતે હૈ અપના ભગવાન આત્મા પર્યાય મેં અનાદિ સે નવ આઠ પ્રકાર કા ભેદરૂપ પ્રણમતે હૈ, તો ઉસકી પર્યાય મેં અપની યોગ્યતા સે પ્રણમતા હૈ. સબ સાની ચીજ કર્મ કો નિમિત્ત કહેને મેં આતા હૈ, પણ વો નિમિત્ત નિમિત્ત સંબંધ કો વ્યવહાર કહેતે હૈ. ઉસકો છોડકર સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ કરે તો ઉસકો વ્યવહાર કા જ્ઞાન કરને મેં યથાર્થ હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? નિદ્રા હોને યોગ જીવ, જીવ કી પર્યાય, પર્યાય કી બાત હૈ નહીં યહાં કે જીવ નિદ્રા હોતી હૈ. જીવ કી પર્યાય મેં અશુદ્ધતા કા નાશ ને શુદ્ધ કી ઉત્પત્તિ, વો નિદ્રા હોને યોગ જીવ કી લાયકાત હૈ. તો નિદ્રા કરને વાળા નિમિત્ત હૈ, કર્મ છૂટતે વો નિમિત્ત કો નિદ્રા કરને વાળા હૈ, ઉસકો અજીવ નિદ્રા કહા. અજીવ નિદ્રા હૈ, દોનો નિદ્રા હૈ, બંધન હૈ કે યોગ. ભગવાન આત્મા અપની પર્યાય મેં બંધન કે લાયક, ભાવ બંધ કે યુગ અપના પર્યાય મેં હૈ, બંધન એ લાયક. ચાલતે હૈ ના આપણે? બત્તીસ, બત્તીસ પાનો. ઓ, નિકાલ નિકલને કા બંધન મેં સે નિકલને કા રસ્તા હૈ અભી તો. તો ઉસમે ઘૂસ જાતે હૈ નહીં કા ઝઘડા એસા એસા નરી પ્રભુ કહા તેરા શરણ ક્યાંય નહીં મિલે. દુનિયા કોઈ સાથ મેં નહીં આઈ, આ ધૂળ ભી સાથ. સમજ મેં આયા? વાણી ક્યાં તેરી, શરીર ક્યાં તેરા, રાગ આય તો રાગ ક્યાં તેરા, રાગ ભી તેરી ચીજ નહીં. તો કિસકી સાથ તેરે અભિપ્રાય બાંધના હૈ કે ઓ માને એ મારે માનના, ઓ કરે અરે માન આત્મા એસા માન. સમજ મેં આયા? કહેતે હૈ કે બંધને યોગ્ય આત્મા હૈ, અપની પર્યાય કી લાયકાત સે બનતે હૈ. ભાવ બંધ હો, ભાવ બંધ કી બાત હૈ, એ ભાવ બંધ જીવ બંધ હૈ, ઓર બંધન કરને વાળા કર્મ કા ઉદય હૈ, ઉસકો અજીવ બંધ કહેને મેં. ઉદય કહો, ઉદય કહો, નયા બંધ કી બાત નહીં, દોનો બંધ હૈ, એક જીવ ભાવ બંધ, એક અજીવ બંધ, દો કો બંધ કહેને મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા? મોક્ષ હોને યોગ્ય અપની પર્યાય, મોક્ષ હોને યોગ કી અપની જીવ હૈ, વો જીવ કી મોક્ષ હોને યોગ પર્યાય હૈ, ઓર મોક્ષ કરને વાળા ઉસ કર્મ કા ઉદય ખર જાતે હૈ, જર જાતે હૈ ને, વો ઉસકો નિમિત્ત દેકર ઉસકો અજીવ મોક્ષ કહેને મેં. જીવ મોક્ષ યહાં, અજીવ છૂટતા ઉસકો અજીવ મોક્ષ કહા. ભારે વાત ભાઈ. મોચન ભાઈ, આમ ભાઈ નિમિત્ત નિમિત્ત સંબંધ ચલાતે, નિમિત્ત સંબંધ, પણ કહેતે કે વો ભેદ પડ ગયા ને છોડ દે, લક્ષ ન્યાય કા લક્ષ કર, ભેદ કા જ્ઞાન કર, જાન હૈ એસા હૈ, પણ છોડને લાયક હૈ, વો છોડને લાયક કા, પણ જ્ઞાન હોય બિના છોડે કિસકો? એ કા જ્ઞાન તો હોના ચાહીએ કે નહીં? એમ સાત ભેદ ક્યું પડા? જીવ કી પર્યાય કી યોગ્યતા, વો કર્મ કા નિમિત્ત, એસે સાત ભેદ પડ ગયા. દો તો દ્રવ્ય હૈ, સાત ભેદ પડ ગયા, તો જાનના તો બરાબર, જાનકર છોડના હૈ, અપની પર્યાય મેં એસા હોતા હૈ, એસા જાનકર લક્ષ છોડકર વિનાયક ભાવ પર દ્રષ્ટિ દેના, ઉસકા નામ સંયક દર્શન, ઉતાર્થ નહીં સે આત્મા જાના કહેને મેં આતા. અરે વાત, મેં મગજનું કામ કરવું એટલે ઓલી બહારથી કઈ મળી જતું હોય ને તો એટલે પકડી લીધા. સાદાન ઇન્દ્રિય બહાર છે, દમન ને થોડા છોડો છોડો છોડો, ક્યાં જોડે દૂર, ઘર કીધી ઘૂસી ગયા તો અંદર મેં ટકો જોડે છોડે. मैं छोड़ू ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है, क्या घुस गया अंदर में, गुस्सा नहीं छोड़ू तो उसका तक मैं पक जाता पकड़ाओ तो छोड़ा समझ में आया, उसने तो भूल पकड़ी थी, भूल पकड़ी थी तो भगवान चिदानंद आत्मा का आसन करके भूल छूट जाती है, दूसरा कोई उपाय समझ में आया। आ तो वस्तु ऐसी है मां, कोई सर्वज्ञ कही है माटी है नहीं, ऐसी है ही वस्तु, ऐसी है तीन काल तीन लोक में ऐसी चीज है, समझ में आया। पर उसका अपनी पकड़ से जो अर्थ करे ना, अपनी पकड़ से ले तो कोई मार्ग हाथ आएगा नहीं, लो वो दोनों मोक्ष है आ गया आते दोनों, यह भाव मोक्ष जीव भाव, वो छूटा वो अजीव भाव अजीव मोक्ष। क्यों हमें कहते कारण क्यों पड़ा कि एक के ही एकीला स्वभाव की अभेदता के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव समुद्रम मोक्ष की सिद्धि नहीं होती बनती, एकीला में ऐसा पर्याय भेद नहीं होता, पुण्य ने पाप ने आश्रव ने संबंध निद्रा ने बंद मोक्ष एकीला में नहीं पड़ता, एक साथ में होने योग और निमित्त ओ दो का संबंध से ऐसा भेद पड़ते है, समझ में आया। क्योंकि एक के ही उसका अर्थ ऐसा नहीं है तो दूसरा कराते हैं, भाषा ऐसी है क्योंकि स्वभाव में भेद पड़ने की ताकत नहीं, पर पर्याय में भेद है तो निमित्त का लक्ष्य कराकर वो निमित्त कराते हैं, अनायोग्यता अपनी है ऐसा बनाया है, करावे फरावे कोई पर द्रव्य अपने को छूते नहीं कराते तीन काल में है क्यों आप आपे घनी वगड़ा आधार जो एक ने नो माटे कर्म ने लेना भेद छे। अरे भाई आई योग्यता तो तेरी है, वो तो निमित्त का योग्यता तो तेरी है, पंच पाप आश्रम बंद होने की ये लायका तो तेरी का, समझ में आया। शास्त्र का अर्थ फेरने की दृष्टि पड़ गई, शास्त्र का कैसे समझना, व्यवहार हो चाहे नीचे लगा दे, नीचे हो चाहे व्यवहार लगा दे तो कहते हैं भगवान आत्मा एकीला आत्मा समान समान समान, एकीला आत्मा में ऐसा साध भेद क्यों पड़े, वो तो अपनी युगता पर्याय में निमित्त अजीब ऐसा भेद से ऐसा साध पर्याय उत्पन्न होती है, कौन अपने आप पुण्य पाप आश्रम संबंध मिजरा मन मुख की सिद्धि नहीं बनती, ये दोनों जीव ने अजीब है, अर्थात दोनों में एक जीव है न दूसरा अजीब है, वो पहले से कहते हैं ये वो भाव पुण्य जीव है, निमित अजीव पुण्य है, भाव पाप जीव है, निमित अजीव पाप है, भाव आश्रव जीव है, निमित अजीव आश्रव है, संवार करने वाली योग्यता जीव है, निमित अजीव संवार है, निद्रा करने की योग्यता जीव की है, निद्रा होती है उसको अजीव निद्रा कहते हैं, अजीव निद्रा है, भावबन जीव है, निर्बन पूर्व का उदय है उसको अजीवबन कहने में आता है, भाव मोक्ष होता है वो जीव का भाव है, और जब परमाणु खिर जाते हैं वो अजीव मोक्ष रहा समझ में आया। अरे भैया बापू ये तो समझने की तो प्रयत्न करना चाहिए, यानी समझ में ना आवे ऐसी कोई चीज नहीं, आचार्यों तो समझने की माटी कहा है ना, ऐसे कहे हम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एम क्या है, ये तो कहते हैं कि हम दाए प्रमाण पांचवी गाथा में कहा, मैं दिखाऊंगा वो प्रमाण करना अनुभव से, ऐसा कहा है अनुभव से कहा पांचवी गाथा संगतम विहतम दाहे अपनों से विवेण जदि दाहे समानम, मैं अभेद चिदानंद भूतार्थ को ऊपर से भिन्न अपना स्वभाव से एकत्व ऐसी चीज को कहूंगा प्रमाण कर जी, अपना अनुभव में लेकर प्रमाण करजे, ऐसी एकली धारणा करके नहीं, प्रमाण करजे एम के नहीं तेरे प्रमाण होगा ऐसा नहीं। समझ में आया अमृत नहीं, वो तो एक एक शब्द में बड़ा रहस्य पड़ा है, मफत में कहा नहीं एक शब्द। कहते हैं कि दोनों जीव अजीव है, अर्थात दो में एक जीवन एक अजीव, इतना भेद करके अबे बाह्य दृष्टि से देखे जावे या कर्म का निमित्त के आंख से देखे, बाह्य दृष्टि से देखा जावे जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जीव ने कर्म का समीप दो की दृष्टि करने से या एक रूप से अनुभव करने पर, कौन बंध पर्याय का समझा एक रूप, वो विकारी पर्याय मेरा है, मेरा है, भेद मेरा है, ऐसा अनुभव करने पर यह नव तत्व भूतार्थ है, व्यवहार से नव तत्व है, नव तत्व पर्याय में नव भेद है। मैं ये मुझे क्या किया है, नव है आश्रय करने लायक नहीं है, कोई निषेध कर दे कि नव पर्याय में भेदे है नहीं, एक इला आत्मा शुद्ध ही है अनादि से है, बिल्कुल झूठ है। समझ में आया, पर्याय में ऐसा भेद है, अनादि बंद पर्याय के समीप जाकर एक रूप, क्या भेद को विकार को आदि एक रूप अनुभव करने पर यह नव है, नव व्यवहार नहीं का व्यवहार रूप है, एक जीव द्रव के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव कर अभूतार दे लो, व्यवहार से व्यवहार है, अंदर एक जीव का द्रव का स्वभाव, जीव द्रव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव, विनायक स्वभाव, ऐसा द्रव के स्वभाव के समीप जाकर, क्या भाषा देखो तो खरा, ओ पर्याय में समीप जाकर एकत्व हो तो नौ है, यहां समीप में जाओ एक जीव द्रव के स्वभाव, भगवान एक जीव द्रव का विनायक शुद्ध भाव के समीप एकाकार होने से अनुभव करने पर ये नव झूठा है, नव है एक में नव है नहीं, नव में नव है पर एक में है नहीं। हा समय सार की शिका गजब की है, समझ में आया, व्यवहार से नव का भेद है, वो तो बंद की पर्याय की समीप जाकर पर क्या लक्ष्य उठते हैं उसका भेद है, पर एक जीव द्रव का स्वभाव पर दृष्टि देने से एक ही भूतात है, नव असत्यार्थ है, नव है नहीं, वो अपेक्षा से असत्यार्थ कहा विशेष है उसके।